हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद 18वां अध्याय 46वां श्लोक। धारयिष्ये व्रतं ब्राह्मण ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं ध्रन्ति यान्युत। धारयिष्ये व्रतं ब्राह्मण ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं ध्रन्ति यान्युत। दिति उवाच। दिति ने कहा धारयिष्ये अंगीकार करूंगी व्रतां व्रत ब्रहान हे ब्राह्मण ब्रूहि कृपया कहें कार्याणि करणीय यानि जो सब मैं मुझसे यानि जो सब च तथा इह यहां निषिद्धानि वर्जित न नहीं व्रतम व्रत धनंति तोड़ते हैं यानि जो सब उत भी। दिति ने उत्तर दिया है ब्राह्मण मैं आपके उपदेश को स्वीकार करती हूं मैं व्रत का पालन करूंगी अब मुझे बतावें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है और किस प्रकार यह व्रत भंग हो सकेगा कृपा करके यह सब स्पष्ट बतावें। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जैसा कि पहले कहा जा चुका है स्त्री सामान्यता अपना स्वार्थ साधना चाहती है। कश्यप मुनि ने दिति की इच्छा पूर्ति के लिए एक वर्ष तक शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा और चूंकि वह इंद्र को मारने के लिए इच्छुक थी अतः उसने तुरंत अंगीकार कर लिया और कहा कृपया मुझसे उस व्रत को कहें और बतावें कि उसे किस प्रकार पालन करना होगा। मैं वचन देती हूं कि मैं उसको भंग नहीं करूंगी। स्त्री की मनोवृत्ति का यह दूसरा पक्ष है। यद्यपि स्त्री अपनी योजना पूरी करने की परम इच्छुक रहती है किंतु यदि कोई उसे शिक्षा देता है विशेष रूप से जब पति शिक्षा देता है तो निर्दोष भाव से पालन करती है। इस प्रकार उसे अच्छे उद्देश्य प्राप्ति के लिए शिक्षित किया जा सकता है। स्त्री स्वभाव से पुरुष की अनुगामिनी बनना चाहती है अतः यदि पुरुष अच्छा है तो स्त्री को सदकार्य के लिए शिक्षित किया जा सकता है। सातवें स्कंद में ये ज्यादातर जो संवाद है ये शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं और सूत गोस्वामी बता रहे हैं सूत गोस्वामी ने पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के बारे में बताया। तो जब भगवान को दो अलग अलग अवतार लेने पड़े और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करना पड़ा, तो उसका दोष उन दोनों की माता ये दिति जो है ये दैत्यों की माता है। दैत्य दिति से आते, दिति के पुत्र दैत्य, ये दैत्यों की माता है। तो वध तो स्वयं भगवान ने किया, लेकिन वो दोष दे रही है इंद्र को। इंद्र को दोष दे रही है कि इंद्र की वजह से मेरे दोनों पुत्र मार दिए गए। ये इंद्र बहुत अच्छा नहीं है, मैं एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हूं जो इस इंद्र को भी मार दे। और कश्यप मुनि अपनी पत्नी की जो ये डिमांड है उससे बहुत खुश नहीं है। इट इज नॉट वेरी कमेंडेबल के एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जाए जो इंद्र को मार सके। ऐसे महाभारत में भी आता है कि जब द्रुपद जो द्रोणाचार्य के मित्र थे, द्रोणाचार्य के भेजे जाने पर पांडवों ने, केवल अकेले पांच पांडवों ने द्रुपद की सारी सेना को अकेले संभाल लिया और ना केवल उसको हरा दिया या मार दिया, उसको जिंदा ही बंदी भी बना लिया द्रुपद को, और ले आए द्रोणाचार्य के सामने कि ये रहा आपका मित्र और आपका अपराधी जिसको पकड़ने के लिए आपने हमें भेजा था। अब आपकी जो इच्छा है वो इसके सामने हम करें। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया कि इसका, ये मेरा मित्र है, मैं इसको किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसको खरोंच भी आ जाए मैं नहीं चाहता, लेकिन इसने मेरा अपमान किया था और अपने अहंकार में मुझे दरिद्र ब्राह्मण और अपने आप को राजा भोज कहा था, इसलिए इसका आधा राज्य ले लो और आधा वापस कर दो इसको। तो ना मैं दरिद्र ब्राह्मण रह जाऊंगा और ना ये राजा भोज, हम दोनों बराबर, क्योंकि मित्रता तो समानता में होती है। और फिर इसके आधे में से एक गौ लेके वो मुझे ब्राह्मण स्वरूप दान कर देना। तो द्रुपद बंदी बन चुका था, हार चुका था, तो जो कुछ भी द्रोणाचार्य चाहते थे उसको देना ही पड़ा। लेकिन द्रोणाचार्य ने फिर भी उसको राजा बने रहने दिया और उसका अहंकार ये सहन नहीं कर पाया कि मैं द्रोणाचार्य से हार गया और द्रोणाचार्य ने आधा राज्य मेरा छीन लिया। तो वो अहंकारवश ऐसी अग्नि में जलने लगा कि मुझे बदला लेना है। तो जगह जगह ऋषि मुनियों के पास गए और बहुत से ऋषि मुनियों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपको ऐसा पुत्र प्राप्त करने की का यज्ञ नहीं करा सकते जो द्रोणाचार्य को मार सके। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है और बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, उनके पास इतने सारे आशीर्वाद हैं, वो हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु हैं, ये अच्छी इच्छा नहीं है, इस इच्छा को त्याग दो। वैसे भी तुम्हें बंदी बना के वो तुम्हारा वध भी करा सकते थे, सारा राज्य भी ले सकते थे, लेकिन उनकी उदारता कि तुम्हें आधा राज्य दे दिया। तो तुम्हारा मित्र है, लेकिन द्रुपद राजा थे, ब्राह्मण से हार गए, उनको सुहाया नहीं। तो अंत में एक ऋषि ने कहा, ठीक है, तुम्हारा यज्ञ मैं करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर जो भगवान ये चाहते हैं कि कोई ऐसा पुत्र हो जो द्रोण का वध कर सके, तो मैं कौन भगवान के रास्ते में आने वाला। और अगर जो भगवान ऐसा नहीं चाहते कि कोई ऐसा व्यक्ति जन ले जो द्रोण की भी हत्या कर सके, तो फिर मैं कैसे करवा दूंगा, मेरे करने से क्या होगा अगर भगवान नहीं चाहते तो? कोई मीनिंग ही नहीं है मेरे करने का। तो उन्होंने यज्ञ करवाया, और किसका जन्म हुआ यज्ञ कुंड में से? दृष्टद्युम्न और द्रौपदी। यू बाय वन गेट वन फॉर फ्री। द्रौपदी को किसी ने नहीं मांगा, द्रौपदी दृष्टद्युम्न के साथ में अपने भाई के साथ में प्रकट कि ये क्यों, कि ठीक है तुम्हें चाहिए था पुत्र कि जो द्रोण को मार सके हरा सके, तो उसके लिए कुछ कारण भी तो चाहिए, ये कारण साथ में आइए। क्योंकि अभी तक जो आपके पास कारण है द्रोण को हराने के लिए या मारने के लिए, वो कोई अच्छा कारण नहीं है, क्योंकि आपको द्रोण से ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेम करना चाहिए। उसने आधा राज्य आपको वापस कर दिया आपका, उसने तो अपनी मित्रता निभाई है, और आप उस मित्रता को शत्रुता में बदल रहे हो। तो इसलिए अभी तक जो आपके पास कारण है द्रोण को मरवाने का, वो अच्छा कारण नहीं, ये अच्छी कारण है द्रौपदी। इसकी वजह से दृष्टद्युम्न द्रोण को हरा देगा। तो इस लीला का अंत आप जानते ही हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को ये वरदान था कि अगर उनके हाथ में कोई भी शस्त्र है तो उनको कोई हरा नहीं सकता। और शस्त्र क्या है? कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र। अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है, कौन बता सकता है? अस्त्र और शस्त्र में अंतर? वेरी गुड। दैट इज द गार्लैंड फॉर यू माता जी, somebody give it to her. शस्त्र वो है जो हम हाथ में पकड़ के उससे लड़ते हैं, जैसे तलवार या धनुष। और अस्त्र वो है जिसको हम फेंक देते हैं, जैसे कि भाला या तीर, वो चला जाता है, मिस हो गॉन। तो अगर कोई भी अस्त्र और कोई भी शस्त्र द्रोणाचार्य के पास है तो उनको कोई हरा नहीं सकता। और अस्त्र क्या हो सकता है? एक घास का तिनका आप अगर ऐसे करके पकड़ लो तीर बना के, तो वो अस्त्र है। That's it. तो कौन उसको हराएगा? एक घास का तिनका भी अगर उसने उठा लिया तो उसको हराया नहीं जा सकता। कौन उसको मारेगा? लेकिन जो धर्म के रास्ते में खड़ा होता है उसको मारने का रास्ता स्वयं भगवान निकाल देते हैं। स्वयं भगवान महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के सामने खड़े हुए थे। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, उसकी वजह से भगवान के सबसे प्रिय भांजे की हत्या की गई थी। अपना भांजा सबको बहुत प्रिय होता है, और ये तो ऐसा भांजा था जो उन्हीं के अपने महल में जन्म लिया, सब कुछ पला बड़ा, पूरी तरह से उनके संरक्षण। तो वो पुत्र से भी अधिक है, और भगवान ने उसको ये महायुद्ध के लिए ना केवल ट्रेन किया, शिक्षित किया, बल्कि उनको पहले से ही पता था कि इसको तो इसकी बलि दी जाएगी, और उसकी बलि के आधार पे एक मेटीरियल रीजन इन लोगों को, जो धर्म युद्ध से तो मर नहीं सकते, युद्ध के नियमों का पालन करके तो इनको कोई हरा नहीं सकता, ना भीष्म को ना द्रोण को कोई नहीं हरा सकता, तो इनको किसी और तरीके से हराना होगा। तो स्वयं भगवान ने युक्ति निकाली कि कह दो ये ब्राह्मण तो है लेकिन ये अपने पुत्र मोह में बिल्कुल लुप्त है, कह दो अश्वत्थामा हाथों, तो ये शस्त्र छोड़ के बैठ जाएगा। कैसे कह दें? ऐसे किसी का कहा वो तो मानेगा भी नहीं, ये युधिष्ठिर से कहलवा दो, युधिष्ठिर कहेगा तो मान जाएगा। और युधिष्ठिर कैसे कहेगा? युधिष्ठिर झूठ बोलेगा नहीं, तो ठीक है अश्वत्थामा नाम का हाथी जो है उसे मार दो। अश्वत्थामा को तो मारना नहीं है, द्रोणाचार्य बैठ गए, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की को स्वर्ग पहुंचा दिया, जैसे कहते हैं स्वर्गवास, हर किसी का स्वर्गवास, चाहे हमें पक्का पता है नरक में गया होगा, लेकिन हम कहते हैं ओ स्वर्गवासी हो गए। तो इसी तरह ये दिति इंद्र को जो मार सके ऐसे पुत्र की कामना कर रही है, लेकिन इंद्र चाहे जो कुछ भी करे है वो ब्रह्मा जी के संरक्षण में, ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त किया हुआ। इंद्र कौन है? एक जीवात्मा जैसे हम हैं, एक बद्ध जीव, लेकिन एट रैंडम एडहॉक तरीके से कोई इंद्र नहीं बन जाता। जो डिजर्विंग है उस पद का या आशीर्वाद या वरदान के रूप में वो पद को प्राप्त करता है वो इंद्र बनता है। तो वो अपने हिस्से का, जिसको आप कह सकते हो, सुख भोग रहा है, और वो अगर गलती भी करता है तो ब्रह्मा उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अभी पहले इसमें कथा आई है, सातवें स्कंद में ही है ना, वृत्रासुर को मारने की, छठे में या छठे में, छठे पे तो है, वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया क्योंकि दानव था, लेकिन इंटरनली वो बहुत पायस था। कौन था? चित्रकेतु, पिछले जन्म से उसको मार दिया तो पाप ब्रह्म हत्या पड़ गई और वो इंद्र के पीछे पीछे और इंद्र आगे आगे। एक्चुअली इसका कनेक्शन बृहद भागवत अमृत में भी आता है, जो गोप कुमार की कथा है। कितने लोगों ने गोप कुमार की कथा सुनी है, रुक्मणी कृष्ण के अलावा? गोप कुमार की कथा नहीं सुनी? हाँ, किसने सुना है गोप कुमार का? कहां पे आया इसका कनेक्शन? मैंने गोप कुमार की कथा, गोप कुमार की, ओके, तो आप बताओ आपको याद है ये वाला कनेक्शन? हाउ डिड इट कनेक्ट विद दिस पार्ट ऑफ द भागवतम? या तो गोप कुमार, क्योंकि अपने जप में ध्यान देते थे, उनके धीरे धीरे जो भौतिक कामनाएं थी वो शांत होती गई और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ में होती गई। तो जब जिस राज्य में वो गए हुए थे वहां के राजा की मृत्यु हो गई और कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो वहां के जो मंत्रीगण, सारी काउंसिल जिसको कहते हैं इंडियन ब्यूरो, वो सब वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने देखा कि जो गोप कुमार है इसमें वो सब गुण है जो एक राजा में होने चाहिए, इसको राजा बना दो। तो गोप कुमार को राजा बना दिया गया। वहां से आगे उनको वो राजपाट छोड़ के जगन्नाथपुरी चले गए। क्यों? क्योंकि जब नारद मुनि आए उनको पूछने के लिए कि आप यहां ठीक ठाक है, प्रसन्न है, कि हां वो तो हूं, लेकिन मुझे एक बात बहुत सताती है कि क्या ये लोग अपने प्लेट में झूठा भोजन छोड़ देते हैं, उससे भोजन का प्रसाद का निरादर होता है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बाकी सब ठीक है, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो नाम को तो राजा था लेकिन सुबह से शाम तक अपना जप करता और शांति से रहता, और उसकी आध्यात्मिक उन्नति की वजह से किसी दूसरे राजा को यह हिम्मत भी नहीं थी कि उसके राज्य पे वो आक्रमण कर दे। तो नारद मुनि ने कहा, अच्छा अगर जो ये बात आपको सताती है तो फिर आपको जगन्नाथपुरी जाना होगा, वहां पे कोई भोजन जो प्रसाद है उसको उच्चिष्ट नहीं माना जाता, किसी का भी खाया हुआ फिर कोई भी खा लेता है, वो जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद है और उसके ऊपर इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की कृपा है। गोप कुमार वहां चले गए, बाद में वहां भी राजा बना दिए गए। तो ऐसे ही गोप कुमार, कोई गोप कुमार को पता ही नहीं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज होती है। वहां स्वर्ग का उनको पता चला तो कोई जरा सी इच्छा शायद उनकी हुई होगी कि हां स्वर्ग साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो क्योंकि इतना आध्यात्मिक तेज है, भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी। वो अपने शरीर समेत और सब याद के समेत सब स्वर्ग चले गए। जब वो स्वर्ग गए तो वहां इंद्र ही नहीं, क्योंकि इंद्र ने अभी वृत्रासुर का वध किया था और वो एक साल के लिए अपने आप को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए भाग दौड़ रहे थे। तो इंद्र ना होने की वजह से देव गुरु बृहस्पति और सबकी राय से गोप कुमार को इंद्र की पदवी पर बैठा दिया गया कि जब तक इंद्र नहीं आए तब तक गोप कुमार यहां का राज्यभार कार्यभार संभालेंगे। फिर क्या हुआ? गोप कुमार ने देखा कि एक दिन सभा में बहुत सुंदर दिखने वाले सफेद सफेद चमकते हुए वस्त्र पहनने वाले, उनके शरीरों से इतना तेज निकल रहा था कि सारी सभा को सभागृह को वो अलंकृत कर रहा था। उनको देख के गोप कुमार अट्रैक्ट हो गए कि ये लोग कौन है? ओ ये तो महरलोक के वासी हैं। महरलोक वो क्या? कि जैसे पृथ्वी से ऊपर चंद्रलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक है, ये लोग वहां से आए। जैसे हमारे केशव मुरारी है ना, इनके चेहरे से तेज निकलता रहता है। महरलोक के निवासी भी ऐसे ही तो जब गो कुमार की इच्छा हुई, अच्छा महरलोक भी है, तो भगवान ने उनको महरलोक पहुंचा दिया। तो इस तरीके से एक एक स्वर्ग लोक की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गो कुमार कहां पहुंचे, सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और जिस समय वो सत्यलोक पहुंचे, उस समय किसी कारणवश ब्रह्मा जी भी वहां नहीं थे, तो गोप कुमार को ब्रह्मा की पदवी पर बैठा दिया गया। लेकिन सब कुछ करते हुए भी गोप कुमार में कोई आसक्ति नहीं थी किसी भी चीज के लिए। आसक्ति, आसक्ति के नहीं आसक्ति, ये आसक्ति दो प्रकार की है। एक होती है आम आसक्ति, जो हम सबको है, रुक्मिणी कृष्ण को छोड़ के बाकी सबको मटेरियल चीजों से, किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी चीज से आसक्ति है। तो जब हम भक्ति के पद पर आगे बढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है आसक्ति को त्याग दो। लेकिन जब हम भक्ति के पद पर और भी ज्यादा ऊपर बढ़ते हैं, आसक्ति को त्याग के, फिर क्या कहा जाता है, अब आसक्ति करो। लेकिन ये दूसरी आसक्ति है, वो भी आसक्ति है, नहीं तो कहते नहीं आसक्ति, लेकिन आसक्ति है। वो आसक्ति भगवान से आसक्ति है, भगवान की सेवा से, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान के गुण से, भगवान की लीलाओं से, वो दूसरी आसक्ति है। तो हमें कौन सी आसक्ति छोड़ देनी है, भौतिक आसक्ति, और कौन सी आसक्ति प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक आसक्ति, भौतिक आसक्ति और आध्यात्मिक आसक्ति। जो भौतिक आसक्ति है वो हमें इस संसार से बांधती है, और ज्यादा वैसे ही हम बद्ध जीव हैं। लेकिन ये आसक्ति हमें और ज्यादा बांधेगी, और जो आध्यात्मिक आसक्ति है वो क्या करेगी, आध्यात्मिक आसक्ति हमें इस बद्ध जीवन से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। वो आसक्ति हमें, क्योंकि वो आसक्ति भगवान से है, तो वो हमें भगवान के पास ले जाएगी। भगवान तो हमें वही देंगे जो हम चाहते हैं। भौतिक सुख चाहिए, ठीक है ले लो। आध्यात्मिक सुख चाहिए, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर पहले माया को भेजते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। कई कई रूप में माया आती है, कभी कभी डिवोटी का चोला पहन के भी माया आ जाती है, और टेस्ट करती है आपको। अच्छा वास्तव में भगवान नाम का प्रचार करना चाहते हो, ये लो ये रास्ते में रुकावट, ये लो ये परेशानी, ये ऑब्स्टकल, भक्त ही आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि प्रचार में कोई ना कोई परेशानी बीच में खड़ी करें। माया है, ये माया भगवान की भक्त है, परम भक्त है, बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, उसका पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन असंभव नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भजन क्रिया, साधु संग, अनट निवृत्ति और श्रद्धा से निष्ठा, निष्ठा से आगे रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन शुरू कहां से होगा? हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अभी जितना बताया, उस किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? आगे क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? यस, व्हाट इफ द डिवोटी इज कमिंग टू नॉट एंगेज इवन कृष्ण कॉन्शियसनेस? But he is wearing devotee clothes, wearing a tilak, dhoti kurta, whatever. ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में माया का प्रतिभू है, लेकिन वो माया आपको टेस्ट करने के लिए उसको लगा के भेज रही है और आपको। सो यू डोंट मीन टू डू इट बट यू आर डूइंग इट। वाई? बिकॉज यू आर अफेक्टेड बाय माया। जैसे कि भीष्म पितामह परम भक्त, कंप्लीटली सेल्फ रियलाइज्ड, एंड श्रील प्रभुपाद सेज कि ही गॉट अ परम गति। जो किसी को अच्छी से अच्छी गति मिल सकती है वो भीष्म पितामह को मिली। लेकिन भीष्म पितामह कर क्या रहे थे? जब धर्म युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह खड़े थे धर्म की तरफ क्या अधर्म की तरफ? अधर्म की तरफ। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ भीष्म पितामह क्या कर रहे थे? चुप बैठे थे। ये धर्म की बात है कि अधर्म की? तो भगवान ने उनको अपनी लीला में उस तरफ यूज किया, क्योंकि भगवान अपनी लीला से यह दिखाना चाह रहे हैं कि 11 और 7 का अनुपात है, 11 कौरवों की तरफ और 7 पांडवों की तरफ। और उसमें भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उस तरफ खड़े, भीष्म पितामह हमारे कोई नहीं मार सकता, द्रोणाचार्य ऑलमोस्ट हमारी है, उनको भी कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं मार सकता, जब तक उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है। और वो अस्त्र शस्त्र तो एक घास का तिनका भी हो सकता है, तो दैट्स इट, यू डन। अगर जो भीष्म पितामह धर्म के पक्ष में खड़े हो जाते तो पांडवों का पलड़ा पहले ही भारी हो जाता। पांडवों का पलड़ा तो बहुत वीक था। और जब अर्जुन भगवान से सहायता मांगने के लिए गए तो दुर्योधन भी पहुंच गया, तो भगवान ने क्या कहा? मेरी चतुरंगिनी सेना या मैं अकेला एक, ना मैं शस्त्र उठाऊंगा ना मैं अस्त्र उठाऊंगा, दोनों में से ایک کو چوز کر لو. اس دنیا میں میری سینا سے چترنگنی سینا سے بیٹر کوئی سینا نہیں ہے. پوری سینا ایک طرف, میں اکیلا کوئی استر شستر کچھ نہیں اٹھاؤں گا, میں ایک طرف. جو چاہیے لے لو, دریودھر نے چاہیے تو. ارجن تو بالکل پاگل ہے, بالکل اس کو عقل نہیں ہے. یہ کرشن کو چین کر رہا اور اوپر سے کہتا ارے کوئی بات نہیں, ارجن میرا انوج ہے, اس بیچارے کو لے جانے دو, میں تو چترنگنی سینا سے ہی خوش ہو جاؤں گا. جبکہ اس کو ویسے بھی وہ سمجھ رہا تھا کہ یدھ باہوبل سے جیتا جاتا ہے. تو اگر جو بھیشم پتاما پانڈو کی طرف کھڑے ہو جاتے, پانڈو کا پلڑا کیول ایک بھیشم پتاما سے بہت بھاری ہو جاتا. بھیشم پتاما کو کوئی نہیں مار سکتا, وہ آپ کا سینپتی ہے, اس کے رہتے سینا کو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دس پندرہ بیس ہزار لوگ تو ایسے ہی دن میں سینک نپٹا دیتا تھا. کوئی بھی مہارتھی اس کے آگے کھڑا کر دو, کوئی مہارتھی اس کے آگے چلنے والا نہیں. سوئم پرشورام بھیشم پتاما کو نہیں ہرا پائے. جب امبا پرشورام کے پاس گئی کہ بھیشم پتاما نے میرا ہرن کیا اور وہ بھی اس سمے ہرن کیا جس سمے میرا سوئمور ہو رہا تھا, تو کشتریہ دھرم کے انوسار انہیں میرا ورن کرنا چاہیے. اگر ورن نہیں کرنا تھا تو ہرن کیوں کیا اور وہ بھی سوئمور میں سے؟ اب میں کہاں جاؤں, ہرن تو کر لیا ورن نہیں کرتے. پرشورام نے کہا اچھا یہ چھتری اپنا دھرم کا پالن نہیں کرتا, چلو ہم اس کو بتائیں گے. بھیشم پتاما کہ میں تو اپنے دھرم کا پالن کر رہا ہوں, میرا دھرم ہے, میں نے پرتیگیا کی ہوئی ہے کہ آج جیون برہمچاری رہوں گا, میرا تو نہیں ہو سکتا بابا. تو پرشورام نے کیا کہا, ارے جو دھرم ہے وہ زیادہ مہتوپورن ہے یا تیری پرسنل پرتیگیا؟ پرتیگیا تو تیری پرسنل ہے, اور جو دھرم ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ دھرم دھرم تو سوئم بھگوان کا دیا ہوا ہے, دھرم کہاں سے آتا ہے؟ ویدوں میں سے. وید کہاں سے آتے ہیں؟ سوئم بھگوان برہما جی کو وید پردان کرتے ہیں. تو وہ ہائر نیم ہے اور تو جس کو فالو کر رہا ہے وہ لوئر نیم ہے. بھیشم پتاما نے کہا ٹھیک ہے, چاہے کوئی ہائر ہے چاہے کوئی لوئر ہے, میں تو اپنی بھیشم پرتیگیا کو ہی فالو کروں گا. اچھا چل, تو پھر تجھے میرے سے یدھ کرنا ہوگا. بھیشم پتاما اور پرشورام کا یدھ ہوا. پرشورام تو آویش اوتار ہیں اور بھیشم پتاما کے گرو بھی ہیں, تو پرشورام کو تو کھتی نہیں پہنچی, لیکن پرشورام بھی بھیشم پتاما کو ہرا نہیں پائے, اتنے پاورفل تھے. بھیشم پتاما کو ہرانے کا کیول ایک ہی طریقہ تھا, امبا کو واپس لے آؤ شکھنڈی کے روپ میں. وہ جب دیکھے گا کہ یہ استری, رکھ دے گا شستر, استری پر شستر نہیں اٹھائے گا, اور کوئی तरीका नहीं था। तो भगवान ने किसी भी तरीके से धर्म की रक्षा की, क्योंकि जो धर्म भगवान का निर्धारित किया हुआ है वो धर्म हाईएस्ट नियम है, सबसे उच्च नियम है। हम जो छोटे मोटे धर्मों की का पालन करते हैं वो निचले धर्म है, इसीलिए 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में से, भागवतम में से, चैतन्य चरितामृत में से और भी शास्त्रों में से प्रवचन देते हुए, पर्पट लिखते हुए बहुत सारे श्लोक्स वर्सेस को कोट किया, लेकिन सबसे ज्यादा बार उन्होंने ये वर्ड्स क्या है, 1866 उसको सबसे ज्यादा कोट किया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचि। ठीक है, तो ऑलराइट, यू गॉट द आंसर। एनी अदर क्वेश्चंस? यस माता जी। एक बात तो ये है कि गुरु की अवज्ञा, दूसरा ये है कि धर्म के विरुद्ध खजाना। अगर जो किसी कारणवश आपको क्या है कि धर्म तो बहुत सारे हैं, एक स्त्री को ले लो तो उसका अपने पति की तरफ भी धर्म है, अपनी पुत्री की तरफ दूसरा धर्म है, पुत्र की तरफ तीसरा धर्म है, पिता की तरफ चौथा धर्म है, बहन भाइयों की तरफ और धर्म है, और पड़ोसियों की तरफ और, एंड द लिस्ट नेवर एंड्स। लेकिन हम सब अपने साधारण जीवन में सारे धर्मों को निभाते हैं, लेकिन परेशानी तब आती है जब दो धर्म आपस में टकरा जाए, ये वाला पालन करूं कि ये वाला पालन करूं, उसको कहते धर्म संकट। तो जब धर्म संकट है तो आप या ये वाला पालन करोगे या ये वाला, दोनों तो कर नहीं सकते हो, तो धर्म संकट ही नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू यूज योर ओन विवेक, आपको अपने विवेक से ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस समय मेरा धर्म कौन सा मुझे पालन करना चाहिए, ये वाला कि ये वाला, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। जब हम उसमें मिस्टेक करते हैं कि पलड़ा जिसका भारी है वो हमें हल्का दिखता है, जब जिसका हल्का है वो हमें भारी दिखता है, तो वो हमारा जो मन इंटेलिजेंस है वो सही तरह से कार्य नहीं कर रहा, इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो इसलिए हमें भगवद गीता में भगवान ऐसा बता रहे हैं कि जो सर्वोच्च धर्म है वो क्या है? मान एकम शरणम व्रज, वही सर्वोच्च धर्म है। क्योंकि जो रिलेशनशिप हमारी भगवान से है उससे ऊपर कोई और रिलेशनशिप है? उससे ऊपर कोई और संबंध? बाकी सब संबंध तो ये शरीर के साथ हैं, शरीर के साथ जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फूक जाएंगे, बात खत्म। भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा नाता है, वो अटूट है और सनातन है। तो इसलिए हम अपने विवेक से ये निर्णय तो लेते हैं कि ठीक है कौन सा धर्म इस समय पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो निर्णय गलत भी हो जाता है। अगर किसी ने एक निर्णय गलत ले लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको सारे जीवन के लिए हम कंडेम कर देंगे और फिर एक और भी कारण है कि भगवान के दूसरी तरफ भीष्म पितामह को खड़ा होना पड़ा। क्योंकि जैसे भक्ति के बहुत सारे रस होते हैं, कौन कौन से रस होते हैं? शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। लेकिन ये रस ये केवल मेजर रस है। इंग्लिश में हिंदी में कैसे कहते हैं मेजर? प्रमुख, मुख्य, प्रमुख, ये प्रमुख रस है। इनके अलावा बहुत सारे और, तो जो साख्य है, साख्य के बहुत सारे सब रस, उसमें से एक वीर रस है। जैसे दो दोस्त हैं, दोस्त तो हैं लेकिन कुश्ती भी लड़ते हैं, फिर भी दोस्त हैं, आपस में जोर आजमाइश और युद्ध भी करते हैं लेकिन फिर भी मित्र हैं। तो भीष्म पितामह साख्य के में है और वीर में, तो वीर में वो साख्य में और वीर में होने की वजह से भगवान को उनको युद्ध देना पड़ा। ठीक है, अब इस तरफ खड़ा होगा अर्जुन की तरफ तो फिर भगवान से युद्ध कैसे करेगा? जैसे ही भगवान ने कहा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उधर भीष्म पितामह को पता चला उन्होंने ठीक है कहा है नहीं उठाएंगे, मैं उठवा के छोड़ूंगा। इतना घमासान युद्ध किया, इतना घमासान युद्ध किया कि भगवान का भी कवच और मुकुट सब उड़ा दिए और अर्जुन की तो बहुत बुरी हालत कर दी, सारा रथ सब कुछ तोड़ दिया। अब भगवान ने कहा ठीक है इसको दे दो, इसको जो चाहिए। उठा लिया भगवान ने रथ का पहिया। तो भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ये लीला है भगवान की। तो जो इतने उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनकी लीला समझ में आना इतना आसान नहीं होता, उसको बताने वाला चाहिए। श्री प्रभुपाद ने उसको अलग 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 जगह, एक जगह कहीं नहीं बताया लेकिन अलग 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 जगह उसका फाइनल आंसर चैतन्य चरितामृत में निकलता है। जो मैं आपको बता रहा हूं चैतन्य चरितामृत में निकलता है। तो उसको समझना, जैसे भगवान को समझना बहुत कठिन है, भगवान के उच्च कोटि के भक्तों को भी समझना बहुत कठिन है। वो भगवान की लीला में क्या क्या करते हैं और भगवान उनके साथ क्या क्या रास। जैसे कि हिरण्यकशिपु, उसको मारने के बाद भी भगवान उसकी अंतड़ियां निकाल निकाल के अपने गले में माला बना बना के पहन रहे हैं, खूब खेल रहे हैं उसके शरीर के साथ में, जबकि वहां प्रहलाद खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि ये माला मुझे नरसिंहदेव भगवान को पहनानी है। लेकिन वो प्रहलाद, छोड़ो प्रहलाद, अभी मुझे हिरण्यकशिपु के साथ। तो वही पिक्चर हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार हमारे सारे दुनिया में पूरे 550 मंदिर में वही पिक्चर ऑल्टर पर रखी जाती है। कोई दूसरी पिक्चर नरसिंहदेव भगवान की हमारे ऑल्टर पे अलाउड नहीं है, या कह सकते हैं कि दैट पिक्चर मस्ट बी देयर, उसके अलावा कोई और हो तो कोई बात नहीं है। वही पिक्चर होनी चाहिए जो भगवान हिरण्यकशिपु के शरीर के साथ होली खेल रहे, क्योंकि वो रस है भगवान में और हिरण्यकश्यप में। हिरण्यकश्यप भी भगवान का भक्त है, तो वो उन दोनों की आपस की लीला चल रही है। ये बातें इतना आसान नहीं होता समझना, संडे फीस्ट में तो हम ये सब चीज की बात भी नहीं करते, आज तो चलो भागवतम क्लास है इसलिए ये लीलाएं और ये भक्तों के संबंध भगवान से, इनको समझना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, और कोई प्रश्न? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।